एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जर्मन दार्शनिक के विचारों में उतर रहे हैं जिन्होंने सही गलत मतलब नैतिकता की हमारी समझ को काफी हद तक बदला, इमैनुअल कांट।
हाँ बिल्कुल, और हम खास तौर पर उनकी एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल किताब ग्राउंड वर्क फॉर द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स पर बात करेंगे। अब सवाल यह है कि भाई ये 200 साल से ज्यादा पुरानी किताब आज हमारे लिए जरूरी क्यों है?
बहुत सही सवाल है। देखिए ना, आज दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, सही गलत के पैमाने कई बार धुंधले से लगते हैं। ऐसे में कांट हमें एक तरह की चुनौती देते हैं। क्या हम भावनाओं या नतीजों से हटकर सिर्फ अपने तर्क, अपनी बुद्धि के दम पर नैतिकता का कोई ठोस, कोई यूनिवर्सल सिद्धांत खोज सकते हैं?
हाँ, एक ऐसा नैतिक कंपस जो शायद सबके लिए हर सिचुएशन में काम करे।
बिल्कुल, तो इसी खोज पर आज हम बातचीत करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर।
तो चलिए पहले इमैनुअल कांट के बारे में थोड़ी बात कर लें। 1724 से 1804 तक ये जर्मनी के कोनिंग्सबर्ग शहर के थे और पश्चिमी दर्शन में इनका नाम बहुत बड़ा है। ये उस जमाने के विचारक थे जिसे एनलाइटनमेंट या प्रबोधन काल कहते हैं।
हाँ, जब तर्क, विज्ञान, इंडिविजुअलिज्म इन सब पर बहुत जोर था।
सही।
और कांट सिर्फ नैतिकता पर ही नहीं रुके, उनकी एक और बहुत मशहूर किताब है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। उसमें उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि हम दुनिया को जानते कैसे हैं, मतलब अनुभव से या सिर्फ सोच विचार तर्क से।
अच्छा।
ज्ञान की इसी गहरी समझ ने उन्हें नैतिकता पर भी एक बिल्कुल अलग नजरिया दिया। वो नैतिकता को आप कह सकती हैं भावनाओं या इच्छाओं की थोड़ी ढीली रमीन पर नहीं टिकाना चाहते थे।
हाँ, तो किस पर?
वो उसे तर्क की चट्टान पर खड़ा करना चाहते थे। कहते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी भी बड़ी अनुशासित और ड्यूटी वाली थी।
हाँ, ये सुना है मैंने अभी। उनका मानना था कि नैतिकता गणित के नियमों जैसी होनी चाहिए, यूनिवर्सल और जरूरी। मतलब ऐसी चीज जो हर सोचने समझने वाले प्राणी पर लागू हो, चाहे वो कहीं भी हो, कैसा भी महसूस कर रहा हो। ये अपने आप में काफी रेडिकल सोच थी उस वक्त।
अब आते हैं किताब पर, ग्राउंड वर्क। देखिए, ये कोई ऐसी गाइड नहीं है कि मुश्किल हालात में क्या करें। जैसा नाम है ग्राउंड वर्क, ये एक बुनियाद है,
आधारशिला।
बिल्कुल। कांट का मकसद है नैतिकता के उस एक सबसे बड़े सिद्धांत, सुप्रीम प्रिंसिपल को खोजना और साबित करना, जिसे वो कहते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव।
कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव मतलब एक ऐसा नैतिक आदेश जो हर हाल में बिना किसी शर्त के लागू होता है।
सही।
और ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है। शुरुआत होती है हमारी रोजमर्रा की नैतिक समझ से, जैसे हम किसी की नेक नियति की तारीफ करते हैं ना।
हाँ।
और फिर धीरे धीरे कांट हमें तर्क की और ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। सिद्धांत और ज्यादा अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट होते जाते हैं, और रास्ते में वो उन नैतिक सिस्टम्स की आलोचना भी करते हैं जो सिर्फ भावनाओं या नतीजों पर टिके हैं।
हाँ, और इस सफर में कुछ खास पड़ाव आते हैं, जैसे शुभ संकल्प यानी गुडविल की बात, कर्तव्य यानी ड्यूटी का क्या रोल है, और फिर उस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को समझने के अलग अलग तरीके, उसके अलग अलग फॉर्मूले।
और आखिर में ये बात कि नैतिकता का हमारी आजादी और स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी से कितना गहरा रिश्ता है।
तो चलिए अब किताब के हिस्सों में थोड़ा और अंदर चलते हैं। कांट शुरुआत करते हैं प्रस्तावना यानी प्रीफेस से। वहां वो बताते हैं कि वो दर्शन की किस ब्रांच पर फोकस कर रहे हैं। उनका ध्यान नैतिकता के उस हिस्से पर है जो अनुभव से नहीं आता, बल्कि शुद्ध तर्क से, जिसे वो अप्रायोरी कहते हैं, उससे समझा जा सकता है। वो अनुभव से परे सिर्फ तर्क पर टिकी नैतिक जिम्मेदारी की नींव खोजना चाहते हैं।
ठीक है, फिर आता है पहला खंड जहां कांट आम नैतिक समझ से दार्शनिक समझ की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पे वो अपनी सबसे मशहूर लाइनों में से एक कहते हैं।
हाँ, कौन सी?
दुनिया में या इसके बाहर भी बिना किसी शर्त के अच्छा माने जाने योग्य कुछ भी सोचना नामुमकिन है, सिवाय एक शुभ संकल्प, गुडविल के।
ये बड़ी गहरी बात है। मतलब सोचिए, जैसे बुद्धि है, हिम्मत है, पैसा, सेहत, ये सब अच्छी चीजें लगती हैं, पर क्या ये हमेशा अच्छी होती है?
शायद नहीं।
कांट कहते हैं नहीं। एक चालाक चोर अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर सकता है ना? एक क्रूर तानाशाह अपनी हिम्मत का। सिर्फ नेक इरादा यानी शुभ संकल्प ही ऐसी चीज है जो अपने आप में हर हाल में अच्छी है, चाहे नतीजा कुछ भी हो।
अच्छा, मतलब इंटेंशन सबसे ऊपर है।
हाँ, और यहीं से कर्तव्य यानी ड्यूटी का आइडिया जुड़ता है। कांट के लिए शुभ संकल्प वही है जो कर्तव्य की भावना से काम करता है, और यहाँ वो एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, कर्तव्य से काम करना और सिर्फ कर्तव्य के अनुसार काम करना।
कर्तव्य से
और कर्तव्य के अनुसार,
इसमें क्या फर्क है?
इसे समझने के लिए उनके उदाहरण बड़े अच्छे हैं।
हाँ, जैसे वो दुकानदार वाला उदाहरण। एक दुकानदार है जो किसी अनुभवहीन ग्राहक को भी सही दाम लगाता है। ये काम कर्तव्य के अनुसार तो है, पर क्या ये सच में नैतिक है? कांट यहाँ सवाल उठाते हैं।
क्यों, वो तो सही काम कर रहा है।
हाँ, पर हो सकता है वो इसलिए कर रहा हो ताकि उसकी दुकान की साख बनी रहे या उसका धंधा बढ़े। अगर उसका इरादा सिर्फ अपने फायदे का है तो उसने कर्तव्य से काम नहीं किया, तो कांट के हिसाब से उसके काम का असली नैतिक मूल्य नहीं है।
ओ अच्छा, मतलब नियत देखी जाएगी। दूसरा उदाहरण कौन सा था?
वो थोड़ा और सोचने वाला है। मान लीजिए कोई इंसान है जिसके दिल में दूसरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। शायद वो खुद ही बहुत दुखी है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करता है सिर्फ इसलिए कि वो इसे अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी समझता है,
बिना मन के।
हाँ, बिना किसी अंदरूनी झुकाव के। कांट कहते हैं कि इस आदमी के काम में सच्चा नैतिक मूल्य है, क्योंकि उसकी प्रेरणा कोई भावना नहीं बल्कि सही काम करने का इरादा है, नैतिक नियम का सम्मान है।
ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है कि बिना भावना के किया गया काम ज्यादा नैतिक है।
बिल्कुल, लेकिन कांट का तर्क ये है कि भावनाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो तो आती जाती रहती हैं, आज हैं कल नहीं। असली नैतिकता तो इरादे में है, उस सिद्धांत में है जिसके तहत हम काम करते हैं।
सिद्धांत? कैसा सिद्धांत?
इसे कांट मैक्सिम कहते हैं, मतलब हमारे काम करने का व्यक्तिगत नियम या उसूल। जैसे एक मैक्सिम हो सकता है, जब मुझे पैसों की जरूरत होगी मैं झूठा वादा करके उधार लूंगा भले ही मैं उसे चुका ना पाऊं। ये एक मैक्सिम है।
अच्छा, तो पहले खंड का निचोड़ ये हुआ कि किसी काम का नैतिक मूल्य उसके नतीजे में नहीं बल्कि नेक इरादे मतलब शुभ संकल्प और कर्तव्य की भावना में है, और ये भावना एक सही मैक्सिम पर आधारित होनी चाहिए।
सही। अब सवाल ये उठता है कि ये सही मैक्सिम या नैतिक कानून आता कहाँ से है? यहीं से बात और गहरी होती है और हम दूसरे खंड में पहुंचते हैं।
दूसरे खंड में कांट तर्क को और आगे ले जाते हैं। अगर नैतिक मूल्य मैक्सिम में है तो किस तरह का कानून या नियम ऐसा है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए? कांट कहते हैं कि ये नियम किसी खास नतीजे या इच्छा पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं। इसलिए ये नियम अपने रूप यानी फॉर्म पर आधारित होना चाहिए, मतलब अपनी सार्वभौमिकता, अपनी यूनिवर्सैलिटी पर।
यही कांट इम्पेरेटिव्स यानी नैतिक आदेशों की बात करते हैं। दो तरह के आदेश बताते हैं, एक है हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव।
हाइपोथेटिकल?
हाँ, ये अगर तो वाले आदेश हैं, जैसे अगर तुम सेहतमंद रहना चाहते हो तो रोज कसरत करो, ये किसी लक्ष्य को पाने का जरिया बताते हैं।
अच्छा, ठीक है।
दूसरा और ज्यादा जरूरी है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ये बिना शर्त वाला आदेश है, ये कहता है तुम्हें ये करना चाहिए बस, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। कांट के मुताबिक नैतिक नियम हमेशा कैटेगोरिकल होने चाहिए, क्योंकि नैतिकता किसी और चीज का साधन नहीं, वो अपने आप में एक लक्ष्य है।
ठीक है, तो ये जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, इसे समझने के लिए कांट हमें तीन अलग अलग नजरिए या कह लें कि सूत्र, फॉर्मुलेशंस देते हैं, जैसे एक ही पहाड़ पर चढ़ने के तीन अलग अलग रास्ते हों।
हाँ बिल्कुल। पहला है सार्वभौमिक कानून का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ, FUL।
ये क्या कहता है?
ये कहता है सिर्फ उसी मैक्सिम पर चलो जिसके बारे में तुम ये भी चाह सको कि वो एक सार्वभौमिक कानून बन जाए।
आसान भाषा में?
आसान भाषा में कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं चाह सकता हूँ कि दुनिया में हर कोई हमेशा इसी नियम पर चले?
अच्छा, जैसे वो झूठा वादा करने वाला उदाहरण?
हाँ वही मैक्सिम था, जब मुझे पैसे की जरूरत होगी मैं झूठा वादा करके उधार लूंगा। क्या आप चाहेंगी कि ये दुनिया का नियम बन जाए?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्यों? क्योंकि अगर सब ऐसा करने लगे तो कोई किसी के वादे पर यकीन ही नहीं करेगा, वादा करने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो ये मैक्सिम खुद को ही काट रहा है, इसलिए झूठा वादा करना तर्क के खिलाफ है और अनैतिक है।
ये तो एक तरह का निष्पक्षता टेस्ट हो गया, फेयरनेस टेस्ट। क्या मैं अपने लिए कोई ऐसा नियम बना रही हूँ जो मैं दूसरों पर लागू नहीं करना चाहूंगी?
बिल्कुल। दूसरा सूत्र है मानवता का सूत्र, فارمولا آف ہیومینٹی FH. یہ کہتا ہے ہر انسان کو, چاہے وہ تم خود ہو یا کوئی اور, ہمیشہ ایک لکش اینڈ کی طرح مانو, کبھی بھی صرف ایک سادھن مینز کی طرح استعمال مت کرو.
یہ بہت پاورفل وچار ہے,
ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک اندرونی مولیہ ہے, اپنی گریما ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچنے سمجھنے والا پرانی ہے. ہمیں کبھی کسی انسان کو صرف اپنے مطلب کے لیے ایک چیز یا اوزار کی طرح یوز نہیں کرنا چاہیے.
جیسے جھوٹے وعدے میں ہم دوسرے انسان کو صرف پیسہ پانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں.
بالکل, ہم اس کی سمجھداری اور اس کے اپنے لکشوں کا اپمان کر رہے ہیں. یہ وچار آج ہیومن رائٹس اور آپسی سمان کی جڑ میں ہے. یہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی اونچ نیچ کی سوچ کو بھی چنوتی دیتا ہے, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ سمان جنم یا پد سے نہیں, ترک کرنے کی کشمتا سے آتا ہے.
تیسرا سوتر کیا تھا؟ وہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا.
ہاں, تیسرا سوتر تھوڑا اور ایبسٹریکٹ ہے. انتوں کے سامراج کا سوتر, فارمولا آف دا کنگڈم آف اینڈس, FKE. یہ ہمیں ایک ایسی آئیڈیل دنیا کی کلپنا کرنے کو کہتا ہے جہاں ہر کوئی ترک سنگت ہے اور ایک دوسرے کو لکش مانتا ہے, سادھن نہیں.
ایک آدرش سماج.
ہاں, اس دنیا میں ہر ویکتی نہ صرف نیتک نیموں کا پالن کرتا ہے بلکہ انہیں بنانے میں بھی بھاگیدار ہے. یہیں سے سوایتتا کا وچار آتا ہے.
سوایت یعنی سیلف رول.
صحیح. کانٹ کہتے ہیں کہ ہم صرف نیتک نیموں کے غلام نہیں ہیں, ہم خود ان نیموں کے نرماتا ہیں اپنی ترک بدھی کے ذریعے. ہم اپنے نیتک بھاگے کے ایک طرح سے ودھاتا ہیں. یہ تھوڑی جٹل بات ہے, پر اس کا سار یہی ہے کہ نیتکتا باہر سے نہیں تھوپی جاتی, وہ ہمارے اندر کی ترک شکتی سے آتی ہے.
ٹھیک ہے, اب آتا ہے تیسرا اور سب سے پیچیدہ کھنڈ. یہاں کانٹ سب سے بڑے سوال سے جوجھتے ہیں. ہمیں نیتک ہونا ہی کیوں چاہیے؟ یہ کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہمیں کیوں باندھتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں کیوں مانوں یہ ترک کے نیم؟
ہاں, یہ بڑا سوال ہے. کانٹ کا جواب ہے سوتنترتا, فریڈم. وہ ترک دیتے ہیں کہ ایک سوچنے سمجھنے والی اچھا, ایک ریشنل ول, اصل میں تبھی کام کر سکتی ہے جب وہ سوتنتر ہو.
مطلب؟
اگر ہماری ہر اچھا, ہر کام باہری کارنوں سے طے ہوتا ہے, جیسے بھوک, ڈر یا سماج کا دباؤ, تو ہم ایک طرح سے کٹپتلی ہیں, سوتنتر نہیں. سوتنترتا کا مطلب ہے اپنی اچھا کو خود دشا دینے کی کشمتا, خود اپنے لیے نیم بنانے کی کشمتا, اور یہی تو سوایتتا یعنی آٹونومی ہے.
تو کانٹ کے لیے سوتنتر ہونا اور نیتک نیموں کے تحت کام کرنا, یہ ایک ہی چیز ہے.
ہاں, ایک ہی سکے کے دو پہلو, ایک پوری طرح سے سوتنتر اور ترک سنگت اچھا. اپنے لیے جو نیم چنے گی وہ کوئی من مانا یا سوارتھی نیم نہیں ہوگا, بلکہ وہی سارووبھومک نیتک نیم ہوگا جسے کیٹیگوریکل امپیریٹیو بتاتا ہے.
لیکن اس میں تھوڑا گولمال نہیں لگ رہا؟ کیا ہم سوتنتر ہیں اس لیے نیتک ہیں, یا نیتک ہیں اس لیے سوتنتر ہیں؟
اچھا سوال ہے. کانٹ اسے سمجھانے کے لیے دو نظریوں, ٹو اسٹینڈ پوائنٹس کی بات کرتے ہیں. ایک نظریے سے ہم خود کو اس بھوتک دنیا کا حصہ دیکھتے ہیں جہاں سب کچھ کارن کاریر یعنی کاز افیکٹ سے بندھا لگتا ہے.
ہاں, جیسے وگیان دیکھتا ہے.
ہم خود کو ایک سوچنے سمجھنے والی, ایک انٹیلیجنٹ دنیا کا سدسیہ بھی مان سکتے ہیں جہاں ہم کارن کاریہ کی زنجیروں سے آزاد سوتنتر کرتا ہے. اسی دوسرے نظریے سے ہم خود کو سوایت اور نیتک نیموں سے بندھا ہوا محسوس کرتے ہیں. کانٹ مانتے ہیں کہ ہم سوتنترتا کو سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے, پر نیتکتا کو سمجھنے کے لیے اسے ماننا ضروری ہے. وہ ایک ضروری پوروادھارنا, ایک پریسپوزیشن ہے.
واہ, یہ تو کافی گہرا گوتا تھا کانٹ کے وچاروں میں. اگر ہم اس پوری بات چیت سے کچھ مکھیہ باتیں نکالیں تو کیا ہوں گی؟ میرے لیے پہلی اور سب سے اہم بات ہے شبھ سنکلپ, گڈ ول کی پردھانتا. ارادہ, نیت سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے, نتیجوں سے بھی زیادہ. صرف کرتویہ کی بھاونا سے کیا گیا کام ہی اصل میں نیتک ہے. یہ کچھ کچھ بھارتیہ درشن کے نشکام کرم جیسا لگتا ہے نا.
ہاں, کچھ سمانتائیں ہیں, حالانکہ وہاں زور شاید پھل کی اچھا کے تیاگ پر زیادہ ہے. کانٹ کرتویہ نبھانے پر زیادہ زور دیتے ہیں, چاہے بھاونا کیسی بھی ہو. تو دوسرا بڑا سبق یہی ہے, کرتویہ بنام جھکاؤ, ڈیوٹی ورسز انکلینیشن.
صحیح.
اصلی نیتکتا تب چمکتی ہے جب ہم اپنی اچھاؤں, بھاوناؤں یا سوارتھ کے خلاف جا کر صحیح کام کرتے ہیں کیونکہ وہ صحیح ہے. اب کچھ لوگوں کو یہ تھوڑا ٹھنڈا یا کٹھور لگ سکتا ہے کہ کانٹ بھاوناؤں کو اتنی کم اہمیت دیتے ہیں.
ہاں, لگ سکتا ہے,
لیکن ان کا ترک ہے کہ بھاونائیں بھروسے مند نہیں ہوتی جبکہ ترک استھر رہتا ہے. یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا نیتکتا صرف دل کی آواز ہے یا دماغ کی بھی.
تیسرا ظاہر ہے کیٹیگریکل امپیریٹیو اور سارو بھومکتا, یونیورسلٹی کا سدھانت. नैतिकता कोई पसंद नापसंद या संस्कृति का मामला नहीं है, ये तर्क का एक अटल बिना शर्त वाला आदेश है। कोई भी काम करने से पहले ये सोचना कि क्या सब ऐसा कर सकते हैं, ये निष्पक्षता की एक जबरदस्त कसौटी है।
चौथा और मेरे ख्याल से आज के समय में बहुत जरूरी, इंसान की आंतरिक गरिमा।
बिल्कुल,
हर सोचने समझने वाले इंसान का अपना एक निरपेक्ष मूल्य है, सिर्फ इसलिए कि वो इंसान है।
बिल्कुल,
उसे कभी भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
भारत जैसे देश में जहां समाज में कई तरह की असमानताएं और भेदभाव दिखते हैं, ये सिद्धांत हर व्यक्ति के बराबर सम्मान और अधिकार की बात करता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
और पांचवा, इच्छा की स्वायत्तता,
ऑटोनॉमी ऑफ द विल।
ये शायद कांट का सबसे क्रांतिकारी विचार है। नैतिकता हम पर किसी भारी ताकत जैसे भगवान, समाज या हमारी अपनी इच्छाओं ने थोपी नहीं है, हम खुद अपनी तर्क बुद्धि से नैतिक नियमों के निर्माता हैं।
ये सेल्फ रूल वाली बात बहुत सशक्त है, और ये सारे विचार सिर्फ किताबी नहीं है। सोचिए, व्यापार में ग्राहक या कर्मचारी को सिर्फ मुनाफे का जरिया न समझना, हाँ, या रिश्तों में ईमानदारी रखना, दूसरे का इस्तेमाल न करना, ये सब कांट के विचारों के रोजमर्रा के उदाहरण हैं। कांट की भाषा भले ही थोड़ी मुश्किल हो, पर उनके कुछ विचार सीधे दिलो दिमाग पर असर करते हैं। कुछ यादगार बातें याद करें।
हाँ जरूर, जैसे वो शुरुआती लाइन, दुनिया में सिवाय एक शुभ संकल्प गुडविल के, ये नैतिकता की नींव है। अच्छाई बाहर नहीं, अंदर इरादे में है।
फिर वो यूनिवर्सैलिटी वाला टेस्ट, केवल उस मैक्सिम के अनुसार कार्य करें, सार्वभौमिक कानून बन जाए, ये हमें स्वार्थी या पक्षपाती होने से रोकता है।
और इंसानियत वाला सूत्र, इस तरह से कार्य करें कि आप मानवता को हमेशा एक अंत के रूप में माने, कभी भी केवल एक साधन के रूप में नहीं। ये हमें हर इंसान का सम्मान करना सिखाता है।
स्वायत्तता की बात भी बहुत अहम है। इच्छा की स्वायत्तता वह गुण है जिसके द्वारा इच्छा स्वयं के लिए कानून है। ये हमें बताता है कि सच्ची नैतिकता गुलामी नहीं बल्कि आत्म अनुशासन है।
और कांट की दूसरी किताब से वो मशहूर पंक्ति जो उनके अंदर के एहसास को दिखाती है, दो चीजें मन को विस्मय और श्रद्धा से भर देती हैं, मेरे ऊपर तारों भरा आकाश और मेरे भीतर नैतिक नियम। ये दिखाता है कि नैतिक कानून भी प्रकृति के नियमों जितना ही अद्भुत और महत्वपूर्ण है।
तो इन विचारों को हम अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? मान लीजिए किसी को अपने रिज्यूमे में थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर लिखने का मन कर रहा है। कांट का टेस्ट लगाइए, क्या मैं चाहूंगी कि हर कोई अपने रिज्यूमे में झूठ लिखे? शायद नहीं, क्योंकि फिर रिज्यूमे का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
सही।
या रिश्तों में, क्या आप किसी दोस्त या साथी का इस्तेमाल सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने या कोई काम निकलवाने के लिए कर रहे हैं? मानवता का सूत्र हमें याद दिलाता है कि दूसरे इंसान का भी अपना वजूद है, अपनी भावनाएं हैं, उनका सम्मान करें। और बड़े स्तर पे देखें तो मानव अधिकारों का पूरा ढांचा इसी विचार पर टिका है कि हर इंसान की गरिमा है, व्यापार में ईमानदारी, डॉक्टरों का मरीजों से सहमति लेना, कानून में निष्पक्षता, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कांट के सिद्धांत काम करते हैं।
हाँ, और यहाँ तक कि आज की नई तकनीकें जैसे AI या जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनके बारे में भी हमें सोचना होगा कि क्या वो इंसानी गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान करती हैं। ये सवाल अब और जरूरी हो गए हैं।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई वो है इरादे की ताकत। हम अक्सर नतीजों में उलझे रहते हैं, पर कांट हमें याद दिलाते हैं कि नैतिकता की शुरुआत हमारी नीयत से होती है।
बिल्कुल, और मेरे लिए ये सोचना भी बहुत दिलचस्प है कि हम खुद अपने नैतिक नियम बनाते हैं। ये स्वायत्तता का आइडिया,
ये किसी धर्म या भावना पर नहीं बल्कि हमारी सोचने की क्षमता पर टिका है, ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ तर्क के आधार पर जीना, भावनाओं को किनारे रखकर, कहना आसान है, करना मुश्किल।
हाँ, ये चुनौती तो है। तो कुल मिलाकर कांट हमें बताते हैं कि सच्ची नैतिकता क्षणिक भावनाओं या बाहरी नतीजों में नहीं बल्कि हमारे तर्कसंगत स्वभाव, नेक इरादे, सार्वभौमिक सिद्धांतों के पालन, हर इंसान की गरिमा के सम्मान और हमारी अपनी नैतिक आजादी में है।
और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आज की भागदौड़ भरी भावनाओं से प्रेरित दुनिया में कांट की तरह तर्क को अपना नैतिक मार्गदर्शक बनाना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकट्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।